देखते हैं हम कि आज के लेसन में अल्लाह ताला ने हमें क्या समझाया, क्या बताया है। या अय्युहल्लज़ीना आमनु, ए ईमान वालों। अब ये ईमान वालों को एक अहम बात की तरफ हुक्म दिया जा रहा है। क्या ला तकुलू अमवालकुम बैनकुम बिलबातिल, मत खाओ आपस में एक दूसरे के माल बातिल तरीके से, यानी एक दूसरे के मालों को बातिल तरीका। बातिल तरीका कौन सा होता है? जो हक के उलट हो। और हक का तरीका वो है जो सारे तरीके जो शरीयत ने जायज किए हैं उनके उलट, उनके ऑपोजिट, यानी जो शरीयत ने मना किया जिन तरीकों से, वो सारे तरीके बातिल तरीके हैं। तो तुम एक दूसरे का माल ना खाओ बातिल तरीके से। इल्ला अन तकूना तिजारतन अन तुरादिम मिनकुम, मगर ये कि आपस में रजामंदी से तिजारत तुमने की हो तो ठीक है, अदरवाइज किसी का भी माल छीन झपट के, चोरी करके, डाका डाल के, झूठ बोल के, धोखा दे के, सूद लेके, रिश्वत लेके, किसी तरह भी ऐसे खाना जो कि किसी फ्रॉड के जरिए, किसी ऐसी तरह से भी खाना जो शरीयत ने हराम की हो, वो बातिल में आ जाएगी। झूठी कसम खा के, नाप तोल में कमी बेशी करके, ये जो मिलावट करके, जखीरा अंदोजी करके, यानी आप मार्केट में इतनी शॉर्टेज कर देते हैं पैसे को या चीज को, रोक लेते हैं अपने पास, इतनी शॉर्टेज कर देते हैं कि कीमतें बढ़ जाती हैं, फिर मार्केट में ले आते हैं, ब्लैक मार्केट करना, गसब करके किसी का माल, कि यानी कोई भी ऐसा तरीका जिसमें कि आप दूसरी की रजामंदी नहीं है और आपने उसका माल खा लिया। एक तो होता है ना तिजारत, तिजारत में बाहमी रजामंदी होती है, आपने किसी को पैसे दिए और उससे चीज ली, अब वो पैसे उसके लिए जायज हैं, वो खा सकता है वो पैसे, क्योंकि आप उसने आपके साथ एक म्यूचुअल एग्रीमेंट के तहत एक तिजारत की है। लेकिन एक है पैसे जो किसी के पास गए, लेकिन या तो उसको ला इल्मी थी, उसको पता ही नहीं चला और उसके साथ धोखा हो गया, या झूठ बोल के था, या किसी और तरह से था, बेईमानी के साथ था, ये सारी चीजें इसके अंदर आ जाती हैं। यानी अब वो पैसे हराम हो गए। एक पैसे हैं जो रजामंदी से, ऐसे नहीं है कि कभी किसी से पैसे ले ही नहीं सकते, ले सकते हैं पैसे, मगर उसके पैसे तभी उसके लिए जायज होंगे, हलाल होंगे, जिस वक्त वो तिजारत ऐसी होगी जो बाहमी रजामंदी से होगी, अदरवाइज वो बातिल है रास्ता। ये आयत भी इतना बड़ा एक डोर खोलती है इस बात के कि हम इस पे सोचें कि कौन कौन से बातिल तरीके हैं जो आज माशरों में राइज हैं और जिसकी वजह से इंसान अपने पेटों के अंदर हराम भर रहे हैं। पहले तो बात ये समझनी चाहिए कि जब हराम पेट में जाता है तो होता क्या है, क्या फर्क पड़ता है अगर हराम चला भी जाए। इंसान की दुआ, सबसे बड़ी तो बात है दुआ कबूल होनी बंद हो जाती है। एक वो हदीस है ना, आपने मशहूर हदीस सुनी होगी कि वो इंसान हज पे जाता है, अल्लाह के घर गया, उठा उठा के हाथ दुआएं कर रहा है और उसके ऊपर सफर के भी आसार हैं, उसके बाल भी प्रागंदा हैं, वो कैसे कितनी बुरी हालतों में, कहां से कितनी यानी दूर से पहुंचा हुआ है, मुसाफिर है, तो मुसाफिर होने के नाते भी दुआएं कबूल होती हैं, अल्लाह के घर में भी दुआएं कबूल होती हैं, लेकिन इसकी दुआ नहीं कबूल होती। क्यों? इसलिए कि इसकी कमाई हराम की थी, इसके पेट में हराम है, इसका गोश्त हराम पे पला हुआ। तो सबसे पहले तो ये कि दुआएं ही कबूल नहीं होती, और ये कितनी बड़ी बात है कि इंसान की दुआ कबूल होनी बंद हो जाए तो इंसान तो फिर बेयारो मददगार हो गया ना, जिसकी दुआएं कबूल नहीं होती। और ये हराम जो है, ये दुनिया के अंदर जिस नोयत का भी हराम होता है, सूद का थ्रू हराम खाया गया तो उसकी अलग सजा है, बेईमानी के थ्रू हराम खाया होगा उसकी अलग सजा है, फिर इसी तरह यतीम का माल खाया होगा उसकी अलग सजा है, फिर और उनकी सजाएं जो आखरत के अंदर, वो तो आप देखते हैं, हमने पहले भी डिस्कस की कि किस किस तरह उनकी सजाएं। इसी तरह हदीस के मुताबिक कुत्ते की कमाई, यानी कुत्ते के ने बच्चे दिए आप बेचने चले गए, बिल्ली की कमाई, मुर्दार बेच के जो कमाई जाती है, यानी ये मुर्दार ही है ना, जब सही जिबा ना किया जाए तो वो मुर्दार है। शराब की कमाई, खिंजीर की कमाई, ये हराम है, यानी इनको बेचना खरीदना, अब चाहे बाहम रजामंदी से हो रहा है, एक बाहम रजामंदी है ना कि आप कहें हमने दिया पैसे और ले ली चीज, तो बाहम रजामंदी से होगा। और सूद भी, वो भी राजी था, हम भी राजी हैं सूद देने को, वो सूद लेने को राजी है, तो बाहम रजामंदी से तो हुआ है ना। नहीं, कई चीजें इट्स सेल्फ वो हराम है, वो चाहे आप रजामंदी भी कर लें तो फिर भी वो हराम ही रहेंगी। جیسے ایک زانیہ کی کمائی، وہ زنا کرنے پہ راضی، زنا کرنے والا بھی راضی، وہ اس کو پیسے دیتا ہے، وہ کام کرتی ہے، تو اب مجھے بتائیں کیا وہ جائز ہو گئی؟
نہیں،
کیونکہ وہ اٹ سیلف چیز ہی حرام ہے. ایک ہوتی ہے اٹ سیلف وہ چیز کا حرام ہونا، اس کی ایک نوعیت ہے اور ایک اس کا سیلف ہے، ایک طریقہ ہے، طریقہ حرام ہو سکتا ہے اور ایک وہ چیز ہی حرام ہو سکتی ہے. اور طریقہ حرام کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک آدمی دودھ بیچتا ہے، اور دودھ بیچنا کوئی حرام کاروبار تو نہیں، لیکن جو طریقہ اس نے اپنایا کہ اس میں ملاوٹ کر دی، وہ حرام ہو گیا. پھر اس طرح ایک آدمی کہیں مزدوری کرتا ہے، لیکن وہ جو آورز لگا رہا ہے ان کے اندر کمی کر رہا ہے اور پیسے پورے کے لے رہا ہے، پیسے 8 گھنٹے کے لے رہا ہے، لگا 2 گھنٹے رہا ہے، باقی ٹائم ادھر ادھر باتیں کر رہا ہے. اب وہ مزدوری کرنا غلط نہیں ہے، لیکن وہ جو طریقہ اس نے اپنایا وہ غلط تھا. کاہن کی کمائی بھی حرام ہے، جو یہ فارچون ٹیلنگ کرتے نا، آپ نے دیکھا ہوگا جگہ جگہ چوکنگ، وال چوکنگ کی ہوتی ہے، جی فلانا عامل بابا یہ فو آپ کو یہ بتا دے گا، وہ بتا دے گا. اسی طرح اور بھی پامسٹ ہیں، ہاتھ دیکھ کے بتاتے ہیں یہ کو فلانا، پتہ نہیں کس کس طرح چیزوں، آج کل آپ کو پتا ہی ہوگا ٹیرو کارڈز ہیں تو کیا ہیں، یہ سارے جو کمائی کے طریقے ہیں یہ حرام ہیں. اسی طرح آج کل یہ بہت چیزیں نکلی ہوئی ہیں، جو کہ بہت طرح کے دھندے نکلے ہوئے جو لڑکیوں سے کرائے جاتے ہیں، جس کے جو حرام کے زمرے میں آتے ہیں، جو فحاشی ہیں، ان کو سیل کیا جاتا ہے ان لڑکیوں کو، یعنی ایڈورٹیزمنٹ میں یوز کر کے، یا اس طرح ان کے چہروں کو، ان کی خوبصورتی کو، ان کے فگرز کو فحاشی کے لیے، یہ فحاشی کے ذریعے کمائی کی گئی نا. تو اسی طرح خرید و فروخت، جو جائز خرید و فروخت بھی ہے، اس میں بھی مثلا آپ نے کوئی کپڑا خریدا، اس میں بھی جب تک بائے اور مشتری، خریدار اور جو بیچنے والا ہے، جب تک دونوں جدا نہیں ہوتے، اس وقت تک وہ کوئی بھی ٹرانزیکشن کینسل کر سکتے ہیں، کوئی بھی چیز چینج کر سکتے ہیں، کوئی جب دونوں جدا ہو گئے تو پھر آپ اختیار نہیں ہے، نہ اس کو واپس لینے کا، نہ اس کو واپس دینے کا، انلیس کہ جیسے یہاں پہ ہوتا ہے کہ انہوں نے آپ کو پہلے اجازت دی ہوئی ود ان 30 ڈیز آپ چیز لے آئیں، ود ان اتنے ڈیز آپ کر لیں، پھر ٹھیک ہے. لیکن اگر اس کے علاوہ ہے تو وہ پھر وہ بھی ایک حرام چیز ہے، کہ وہ تجارت بھی ٹھیک نہیں ہے. آپ یہاں پہ تجارت وہ ہے جو آپس کے اندر رضامندی سے کی جائے. تو یہ ایک بہت بڑا دروازہ کھلتا ہے کہ باطل طریقہ کون سا ہے، ہم اس کو جانیں تو صحیح. کہیں یہ تو نہیں کہ ہم باطل طریقوں سے چیزیں کماتے رہیں اور ہمیں پتہ ہی نہ ہو، باطل سے لیتے رہیں. آج کل یہ بھی بہت طریقہ ہے کہ لوگ گورنمنٹ کے ساتھ جھوٹ بولنے کو جھوٹ نہیں سمجھتے، اور ان کو دھوکہ دینے کو دھوکہ نہیں سمجھتے. انڈیویجول کو شاید سمجھ لیتے ہوں، لیکن گورنمنٹس کو دھوکہ دینا، مثال کے طور پہ کوئی کہتا ہے کہ جھوٹ بول دیتا ہے کہ میرے پاس تو کچھ ہے ہی نہیں، میں لو انکم ہوں، میری انکم اتنی لو ہے، میرے پاس کچھ، حالانکہ وہ اچھا کماتا ہے، لیکن گورنمنٹ کو کہہ کے لو انکم کی کیٹیگری میں چلا جاتا ہے، اور وہ گورنمنٹ سے وہ گرانٹ لیتا رہتا ہے، یا سوشل سیکیورٹی لیتا رہتا ہے، یا اور جو بھی پیسے اس کو منتھلی آتے رہتے ہیں، حالانکہ وہ لو انکم لوگوں کے لیے تھے، وہ ان لوگوں کے لیے تھے جو بےچارے بالکل کوئی نہیں، لیکن حالانکہ اس کے پاس تو بہت کچھ ہے، یہ تو کماتا بھی ہے، یہاں اس کے پاس تو بہت کچھ پڑا ہوا ہے، بہت پراپرٹی ہے. لیکن آج کل یہ جھوٹ کتنا زیادہ ہے، ان امپلائمنٹ فائل کر دیتے ہیں، حالانکہ انڈر ہینڈ کہیں اور چپ کر کے کام بھی کر رہے ہوتے ہیں، لیکن گورنمنٹ کو یہ دکھاتے ہیں کہ ہم ان امپلائڈ ہیں، تو ان سے ان امپلائمنٹ حاصل کرتے رہتے ہیں، ادھر سے بھی پیسے لیتے ہیں، ادھر سے بھی پیسے لیتے ہیں. تو جو بھی جھوٹ سے کمائی کی گئی ہو وہ تو حرام ہے نا، یا نہیں ہے؟ جو دھوکا دیا گیا ہو وہ حرام ہے کہ نہیں؟ گورنمنٹ سے لینا حرام ہے، حلال ہے، کہ گورنمنٹ کو دھوکا دے دینا حلال ہے، لیکن لوگوں کو نہ دو، یہ کہاں سے پتا چلا آپ کو؟ پھر اسی طرح یہ جو کسی کی ضرورت سے فائدہ اٹھانا ہوتا ہے، کوئی چیز کی شارٹیج کر دینا مارکیٹ میں، یہ کیا چیز ہے؟ پھر اس کے بعد پھر اپنی چیز لے آئے. اس طرح ناجائز دوسرے کا مال اپنے مال میں ملا کے کھا لینا ناجائز ہے. آپ کو پتا ہے اسی طرح زمین کسی کی ہتھیالی میں نہ، جیسے ہر ایک کا اپنا اپنا سزا کا بتایا گیا، اگر حرام کی سزا ضرور ملنی ہے، अब वो जो जमीन का हमने पढ़ा था, एक बालिश जमीन भी किसी की खाली तो 7 जमीनों का तौक उसकी गर्दन में होगा। सूद खाने वाला अल्लाह और रसूल से जंग ले रहा है, विरासत में गड़बड़ कर दी है, तो पिछली हमने आयतें क्या पढ़ी थी? 70 साल भी कोई हदीस में आया था कि वो नेकी करता रहता है, एंड में अपनी वसीयत में कर जाता है कुछ गड़बड़, तो फिर जहन्नमी हो जाता है। और आया तो आयात में क्या था? अल्लाह की हदूद को तोड़ने वाले के लिए क्या सजा थी? जहन्नुम में अकेला पड़ा रहेगा। ये इस्लाम ना बहुत सेंसिटिव है लोगों के हकूक के बारे में, इंसानों के जो हकूक है ना उसके बारे में बहुत सेंसिटिव है। आप सोचेंगे इतनी सी बात इसे क्या हो जाता है? आज बहुत सारे लोग जो नमाज रोजा भी कर रहे होते हैं लेकिन उसके बाद लोगों से पैसे पकड़ लिए, फलां प्लॉट है, फलां जमीन है, और वहां पे कोई प्लॉट ना कोई जमीन कुछ भी नहीं होता, और वो हाजी साहब कहलाते हैं। मैंने आपको बताया था किसी की रजामंदी के बगैर उसका माल नहीं ले सकते। अभी एक बताया था चुपके से किसी की चीज उठा लेना, उसको चोरी नहीं समझते हम, चुपके से बस उठा ली, चुप करके बदल दी कोई चीज, एक चीज पड़ी हुई थी उसकी जगह दूसरी रख दी, खामोशी से, उसको क्या पता चलेगा? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ना किसी को नुकसान दो ना नुकसान उठाओ, ना नुकसान दो किसी को ना नुकसान उठाओ, यानी दूसरे को ये समझो कि अगर मैं इसकी जगह पे होती तो मुझे क्या अच्छा लगता, क्या मेरे साथ ऐसा किया जाता तो अच्छा लगता मुझे। लेकिन हम ना सबका बताते हैं फलां ऐसे करता है, फलां ऐसे करता है, देखो आजकल कोई हाल रह गया है, बेईमानी इतनी है, फ्रॉड इतना है, और फिर वाकई हम फिर ट्रस्ट भी नहीं करते किसी के ऊपर। लेकिन जब हम उसी जगह पे खड़े होते तो हम भी वही कर रहे हैं, हम भी कहते हैं रिश्वत देके छुड़ा लो जान, क्योंकि अब हम क्या कर सकते हैं। और ये सब बातें हैं कि जो बहुत सोचने की हैं कि अगर हराम माल से जो अच्छा अभी आगे भी जो औलाद हराम माल से जो जिनकी ब्रॉट अप होगी वो फिर आगे क्या निकलेंगे, खुद सोचें कि उनके हालात क्या होंगे। फिर इसी चीजों से हमें पता चलता है कि ये फील्ड वो है जिसमें बहुत एहतियात की जरूरत है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जिसने कसम खा के किसी मुसलमान शख्स का हक मारा अल्लाह ताला इस आदमी पर दोजख वाजिब कर देगा और इस पर जन्नत हराम कर देगा। कसम खा के नहीं कहते, कसम से ये तो इतनी सी चीज है, आपने चीज अपनी बताई कि कसम खुदा की बिल्कुल ठीक चलती है ये गाड़ी, ये फ्रिज बिल्कुल सही चलता है, आप कह दें कि भाई ठीक है हाँ पुरानी गाड़ी है इसमें काम भी आते रहते हैं, लेकिन आप जरूर देख लें, आप खुद भी देख लें, मगर ये नहीं कह सकते कि आप उसके बिल्कुल ऐब छुपा दें। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक आदमी को देखा था बाजार में, वो अनाज में हाथ डाला तो अंदर से गीला था, ऊपर ऊपर खुश्क रखा हुआ था, उसने कहा बारिश हो गई थी तो इसलिए ऐसे हो गया। तो वो छुपा के नहीं, जैसे होता है कि चीज को एक के साथ दूसरे के साथ रख देते हैं तो फिर जब देते हैं तो ऊपर से खुश्क, लोगों ने तो खुश देख के लिया लेकिन अंदर से वो निकाल के दे दी। ये यानी ये बातें लगती हैं कि बहुत छोटी सी हैं, कोई बात नहीं है, अगर 4 सेब अच्छे डाले तो 2 गले सड़े भी डाल दिए। जो जो नापने का आला है, चाहे आज तराजू तो नहीं है, स्केल्स हैं, उनमें उनको ऐसा गड़बड़ करके रख दिया कि वो जरा पीछे है, जरा थोड़ा सा ऐसा ही दिखाता है कि बहुत ज्यादा ज्यादा वेट दिखाता है जो चीज भी रखे। तो कम तोला, उसको कम दिया, पैसे तो पूरे ले लिए। वैलुन लिल मुतफ्फिफीन, क्या है ये? 30वां पारा पढ़ते हैं, उसको याद भी किया होगा आपने। मुतफ्फिफीन कौन होते हैं? जो छोटी छोटी डंडी मारते हैं, बड़ी बड़े फ्रॉड नहीं करते, उन्होंने लाखों करोड़ों नहीं खाए होते, छोटे छोटे करते हैं, उसके लिए भी वैल है, तो फिर दूध बड़े वाले क्या है? आज हाल हमारा ये है कि जो जितना अमीर और अब असर रसूख रखने वाला ना, वो उतने ही बड़े लुक में खाता है, वो उतने ही उसके फ्रॉड करोड़ों और अरबों के होते हैं, जो छोटा है उसके छोटे हैं। तो जब हम ये कहते हैं ना हाँ सारे ऐसे हो गए वहां पे इस तरह है, वहां पे तो हर वक्त बेईमानी और ये है और रिश्वत है, और जब हम जाते हैं तो फिर हम भी वही करते हैं, कोई काम नहीं है, और जब हमें मौका मिलता है तो हम उसी उसी चीजों को कर रहे होते हैं जहां हमें मौका नहीं मिला। बस जिसको मौका नहीं मिला वही शरीफ है, वही ईमानदार है, जिसको मौका मिल जाता है वो बेईमान है। गाड़ियां बेचने लगते तो उसकी सुइयां पीछे कर देते कि माइलेज ही बहुत कम है, अब माइलेज कम है तो जाहिर है ज्यादा पैसे मिलेंगे, हालांकि वो गाड़ी 1 लाख चली होती है, आपने दिखाया 50,000 चली गई, दूसरा तो समझेगा ना नहीं है, वो तो उसके मुताबिक कीमत देगा। लेकिन ये चीजें हम रूटीन की समझते हैं, हम कहते हैं नहीं इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जिसने कसम खा के किसी का हक मारा अल्लाह ताला ने उसके लिए दोजक को हराम कर दिए, दोजक को वाजिब कर दिए, जन्नत को हराम कर दिए। एक आदमी ने कहा या रसूलल्लाह चाहे थोड़ी सी चीज हो, आपने फरमाया हाँ चाहे वो पीलू के दरख्त की एक शाख ही क्यों ना हो, एक शाख क्यों ना हो, यानी एक टहनी बस, इतनी सी छोटी चीज भी क्यों ना हो। तब भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसको ये फरमाया कि ये उसके ऊपर जन्नत हराम है। अल्लाह अकबर। तो ये किसी के साथ जुल्म करके किसी का माल हथिया लेना, नाजायज किसी का माल हथिया लेना, ये सारी चीजें इसमें आ जाती हैं। इतना ब्रॉड है ये, क्योंकि ये आज के दौर के अंदर इतनी सारी चीजें हैं जो नाजायज रास्ते इतने आम हो चुके हैं ना कि उनका लगता है कि ये मिसाल के तौर पे रिश्वत लगता है कि ये तो तोहफा है, ये तो कोई ऐसी चीज नहीं है, तो बच्चों के लिए ये तो चाय पानी का खर्चा है, बहुत मामूली उसको समझा जाता है। हालांकि अगर देखा जाए तो यही चीजें फिर कहा गया ये जो राशि भी है और मुर्तशी भी है, जो रिश्वत लेने वाला भी है देने वाला भी है, दोनों ही जहन्नमी है, दोनों ही आग में जाएंगे। ना तोल में कमी बेशी करने वाले को फरमाया गई तो हम में से है ही नहीं, मिलावट करना हर चीज में, मिलावट हर चीज में मिलावट। देखें चर्ब जुबानी के जरिए किसी को इतनी इतनी चर्ब जुबानी दिखाएं कि वो जो है ना उसको पता ही ना चले कि उसके साथ हो क्या गया, उसको इतनी हेरा फेरियां ऐसे करें कि पता ही ना चले ये क्या है। और ये विरासत के अंदर जो आगे पीछे गड़बड़े करनी है ये क्या है, सारे मतलब ये सारे झूठे मुकदमे करके किसी के ऊपर और फिर उनकी चीजें हथिया लेना, ये सब क्या है, ये सब बातिल तरीके हैं, सब बातिल। यानी नाजायज तौर पे किसी का माल खा लेना, अल्लाह अकबर। तो यहां पे बता दिया गया ला ताकुलू मत खाओ तुम ऐसे, और कयामत के दिन इंसान के कदम अपनी जगह से हिलेंगे नहीं, हशर के मैदान से हिलेंगे नहीं जब तक वो पांच सवालों का जवाब ना देते। हर बंदे को देना है, उनमें से एक सवाल ये हुआ कि माल कहां से कमाया तुमने, किधर से अर्निंग तुम्हारी कहां की थी, तो ये कैसे जवाब देंगे ये सब हम। आगे आता है वला तक्तुलू अनफुसकुम, और ना तुम कत्ल करो अपनी जानों को। इस बात के तीन माने हैं। पहला माना क्या है, एक दूसरे को ना कत्ल करो, क्योंकि जो दूसरा है मुसलमान भाई वो भी आपकी अपनी जान है। जैसे सूरह अल बकरा में यहूदियों को कहा गया कि तुम क्यों कत्ल करते हो अपनी जानों को, जबकि वहां पे बताया गया कि एक दूसरे को क्यों कत्ल करते हो, तो आपने जैसे यहूदी को क्यों कत्ल करते हो, तो यहां पे भी अनफुसकुम का मतलब क्या, दूसरे मुसलमान को कत्ल करना। वो पता है कि अगर कोई आमदन कत्ल करेगा जानबूझ के, यानी वो खता से नहीं हुआ गलती से नहीं हुआ, आमदन किसी को कत्ल करता है तो हमेशा की जहन्नुम है उसके लिए, अल्लाह का गजब है, अल्लाह की लानत है। आगे हम पढ़ेंगे इंशाल्लाह ताला, ये छोटा मामला नहीं है। किसी को जहर दे दिया, किसी को ये कर दिया, किसी को रास्ते से हटाना है, किसी से जेलस हो गए, किसी को ये, तो उनके साथ ये काम करने, ये छोटी बात नहीं है। अच्छा एक तो ये हो गया। नंबर टू कि ये जो ऊपर बातें कही गई हैं, अगर तुम ये इनको इसी तरह बातिल तरीके से माल खाते तो तुम समझ लो कि अब कत्ल कर रहे हो दूसरे को, तो ये नहीं करना, इस रास्ते पे नहीं चलना, इस रास्ते को छोड़ना है। ये भी एक माना है, बास तफसीरों में ये भी आया। तो ना तुम कत्ल करो अपनी जानों को इस तरह से, और माशरे को आप खराब करते हैं ना, माशरे के अंदर एक बेचैनी बेसकूनी का माहौल, एक बेईमानी, आज देख ले हमारे मुल्कों के अंदर क्या हाल है, किसी को किसी का पता नहीं, ऐसे नफसा नफसी है, कोई किसी पर ट्रस्ट ही नहीं करता, हर एक को लगता है ये मुझे लूट के ले जाएगा, कोई महफूज नहीं अपने आप को समझता। तो जो ऐसा माशरा होता है ना, वहां पे समझ जाए कि माशरे का खून कर दिया ना, अपने आप को कत्ल ना करो इन कामों को करके। नंबर थ्री बात, बहुत अहम बात जो मैं आज जिसके ऊपर ज्यादा रोशनी डालना चाहती हूँ, वो है खुदकुशी ना करो। आज खुदकुशी यूथ के अंदर कॉमन होती जा रही है। जरा जरा से मसले के ऊपर लोग खुदकुशियां करने को तैयार खड़े होते हैं। पढ़ाई में नंबर नहीं आए, खुदकुशी कर रहे हैं, ये करें खुदकुशी कर रहे हैं। भाई जरा कोई मसला हो गया, खुदकुशी। मोहब्बत में नाकामी हो गई, खुदकुशी। खुद यानी इंसान ने अपनी जान को इतना हल्का समझा है, हालांकि ये उसकी जान नहीं है, ये अल्लाह की अमानत है उसके पास। और अल्लाह मौत दे, वो वक्त है मौत का। इंसान अपनी मौत को खुद लेकर आए अपने हाथ से, ये गुनाहे कबीरा है, गुनाहे कबीरा। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो आदमी किसी हथियार से खुदकुशी करेगा, पिस्टल से कर ले, गन से कर ले, वो दोजख में उस हथियार के साथ होगा और वो उस हथियार से खुद को बार बार उसी तरह मारता रहेगा। जो जहर से खुदकुशी करेगा वो जहन्नुम में हमेशा जहर ही खाता रहेगा। जो शख्स पहाड़ से गिर के खुदकुशी करेगा वो जहन्नुम की आग में हमेशा इसी तरह गिरता रहेगा। मुस्लिम की ये रिवायत है, यानी वो उसके साथ वही होता रहेगा जिसने अपने आप को मसलन चाकू से मार मार के लहूलुहान करके फिर मार गया, वो उसी तरह अपने आप को करता रहेगा। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक आदमी को लाया गया जिसने खुदकुशी की थी, तो आपने उसकी नमाज जनाजा नहीं पढ़ी थी? ये नहीं मतलब कि पढ़ो ही ना उसकी नमाज, ना पढ़ेंगे तो सही, लेकिन कोई बड़े मुफ्ती या आलिम ना पढ़े, आम मुसलमान बस पढ़ के उसको दफना दे। नहीं, इतनी ज्यादा उसके साथ नाराजगी की बात की गई है। तो इस किसे पता चलता है कि खुदकुशी एक हराम चीज है और इसकी तरफ जाना किसी बात से मायूस होके भी, चाहे हालात कितने ही मुश्किल क्यों ना हो जाए, चाहे हालात कितने ही नामुवाफिक क्यों ना हो जाए, कितने ही गमों का पहाड़ क्यों ना टूट जाए, खुदकुशी जायज नहीं है। आप देखें ये लोग, अगर आप इनको समझते हैं ना कि ये बड़े सुकून में और मजे में, वो जो दुनिया की जन्नत कहा जाता है स्विट्जरलैंड, वहां पे खुदकुशी हलाल है, खुदकुशी लोग कर सकते हैं। हलाल से मतलब ये है कि वो लीगलाइज है वहां पे, लोग दरखास्त दे सकते हैं, भाई मैं इस चीज से तंग आ गया हूं तो मैं खुदकुशी करना चाहता हूँ। तो देखें इन लोगों के अंदर अगर सुकून हो तो फिर ये काम क्यों करें। तो मोमिन जो होता है ना, वो अल्लाह की रहमत से कभी मायूस नहीं होता। मायूस इबलीस हुआ था और वो आज देखा रांदा दरगाह हो गया, रजीम हो गया, धुतकारा हुआ हो गया। उस इबलीस, इबलीस का मतलब ही है मायूस। इबलीस मायूस हुआ था। अल्लाह ताला कहता है जो मेरी रहमत से मायूस हो जाता है ना, उसने कुफर किया। क्या वो समझता है अल्लाह नहीं कुछ कर सकता, अल्लाह नहीं हालात बदल सकता? तो मायूसी को कहा गया ना, मायूसी कुफर है। ये वाकई सही बात है, ये कुरान से साबित है। तो इंसान मायूस होता है तभी करता है ना खुदकुशी। तो ऐसे हालात के अंदर चले जाना या ऐसी इंसान ऐसे डिप्रेशन में चला जाए कि अपने आप को खत्म कर ले, ये हराम मौत है। और सोच ले कि फिर उसके लिए जहन्नुम है। मर के भी चैन ना पाया तो किधर जाएंगे वो? तो हाँ, इधर तो तंग आके कहते ना, अब तो तंग आके ये कहते हैं कि मर जाएंगे, मर के भी चैन ना आया तो किधर जाएंगे? समझ लो कि तो उसने हमेशा के लिए अपने लिए मुसीबत खड़ी कर ली। वो यहां से तंग था, उससे बड़ी मुसीबत आगे थी, उसको नहीं पता था। तो इसलिए खुदकुशी हराम है। अच्छा, एक और बात, जो फोर्थ बात मैं आपको कहना, ये तो मतलब इसका हो गया ना। एक बात जो मैं इसके इसके अंडर ही आप लिख लें कि जो आयत दी जाती है उलमा की तरफ से, ये अहम बात अब मैं आपसे करने लगी हूं कि कहां पे लिखा हुआ है जी कि सिगरेट हराम है, कहां पे लिखा हुआ है जी कि ये शीशा हराम है, फलाना हराम है, ये हराम है, कहां लिखा हुआ? तो उलमा इस आयत को कोट करते हैं, वला तकतुलु अनफुसकुम, अपनी जानों को कत्ल ना करो। कैसे ये उसके अंदर लाए करती है? देखें मैं इसमें आपको बताना चाहती हूं आज थोड़ा सा इस टॉपिक के ऊपर, क्यों इसमें हरज किया है। अब आजकल ये एक फैशन बन गया है स्मोक करना, पहले भी खैर फैशन तो था, आजकल शीशा, हुक्का, फलां, पता नहीं क्या क्या चीजें, वेपिंग, ये सब चीजें आ गई। आप लोग पूछते हरज क्या इसके अंदर, फिर क्या हो गया? यंगस्टर्स कहते हैं कि इसमें कबाहत ही क्या है और कैसे इस्लाम की रूह से ये हराम हो गया। सबसे पहली तो बात ये, जितनी मेडिकल साइंस उठा के आप देख लें, सब डॉक्टर्स आपको कहेंगे कि ये सेहत के लिए नुकसानदेह है। और इससे बढ़ के क्या बात चीज हो सकती है, इसका सबूत क्या हो सकता है कि इसके डब्बे पे लिखा होता है کہ یہ مضر صحت ہے. اور اسلام میں ہر اس چیز کی ممانعت ہے جو انسان کو نقصان دینے والی ہے. اور یہ آیت بتا رہی ہے ولا تقتلوا انفسکم, قیامت کے دن انسان سے نعمتوں کا سوال کیا جائے گا, اور صحت سے بڑی کیا نعمت ہو سکتی ہے جس کو انسان خود اپنے ہاتھوں سے ختم کرے. پھر دوسری بات, اس میں صرف اپنا نقصان نہیں, میں نے ابھی آپ کو کیا حدیث بتائی, نہ خود نقصان اپنے آپ کو دو نہ دوسرے کو نقصان دو, اس میں دوسروں کو بھی انسان نقصان دیتا ہے, اپنے ارد گرد والوں کو نقصان دیتا ہے. کیسے؟ وہ سیکنڈ ڈگری اسموکر بن جاتے ہیں, جو ایکسپوز ہوتے ہیں, اس کے بیوی بچے آدمی کے, یا ایک کوئی بچہ پیتا ہے تو اس کے جتنے ارد گرد والے اس کے گھر میں رہتے ہیں وہ سب اس سے ایکسپوز ہوتے ہیں, ان سب کو اس کا ہارم پہنچتا ہے, میں آگے بتاؤں گی. نمبر تین بات یہ کہ اس کی بدبو اذیت ہے. کچی پیاز اور لہسن کھا کے کہا گیا نمازی مسجد میں نہ آئے کہ اس سے فرشتوں کو اذیت ہوتی ہے, تو اس کی جو بدبو ہے اس سے نہیں فرشتوں کو اذیت ہوتی ہوگی, انسانوں تک کو اذیت ہوتی ہے جس گاڑی میں بیٹھتے ہیں, جو ان کے کپڑے ہوتے ہیں, جس گھر میں رہتے ہیں, آپ دیکھیں گے وہاں پہ سگریٹ کی سمیل ہوتی ہے. نمبر فور بات, وہ پیسہ جو سگریٹوں پہ جلایا جاتا ہے وہ تبذیر ہے. تبذیر کس چیز کو کہتے ہیں؟ وہ پیسہ جو ناجائز چیزوں پر بیجا خرچ کیا جائے وہ تبذیر ہے. اور تبذیر کو کہا گیا, تبذیر کرنے والے قرآن میں کہا گیا وہ شیطان کے بھائی ہیں, یعنی ایک چیز پہلے ہی ناجائز ہے اور اس کے اوپر پیسہ بے دریغ خرچ کر رہے ہیں. یہ ہم نے کیا پڑھا تھا, یہ پیسہ اللہ کی نعمت ہے, یہ تمہاری زندگی کو قائم کرنے کا ذریعہ ہے, اس کی ناقدری مت کرو. ایسے بیوقوفوں کو پیسے دے کے پڑھا ہے نا آپ نے, تو یہ کیا ناقدری نہیں ہے کہ جب پیسوں کو سمجھ لیں کہ جلایا جاتا ہے, جس وقت سمجھ لیں آپ نے ڈالر بل پکڑ کے اس کو آگ لگا دی, جس وقت اس سے سگریٹ خریدی یا کوئی ایسی چیز خریدی. اور جو میں نے پانچ سوال آپ کو کہے کہ قیامت کے دن اس کے بغیر کوئی حشر کے میدان میں سے کوئی انسان ہل نہیں سکے گا, ان میں یہ بھی ہے کہ مال کمایا کہاں سے تھا, وہ خرچ کہاں کیا. یہ مال کمانے کا الگ سوال ہے اور خرچ کرنے کا الگ سوال ہے, یہ نہیں کہ آپ نے کمایا ہوا تو میں چاہے سگریٹوں پہ جلاؤں چاہے کچھ بھی کروں, آپ کو کیا نہیں, اللہ تعالیٰ نے سوال کرنا, کیونکہ یہ بھی اللہ کی امانت ہے. لہٰذا اس کو خریدنا بھی, اس کو بیچنا بھی, اس کو دوسرے کو آفر کرنا بھی, یہ سب گناہ کے کام ہیں. اور اللہ تعالیٰ کو جو کام سخت ناپسند ہے نا, حدیث میں آتا ہے وہ ایک قیلو قال ہے, اس نے کہا یہ, اس نے کہا, مطلب ایسی بیکار باتیں, کثرت سوال ہے اور مال کو اڑانا. اب میں آپ کو بتاتی ہوں سٹیٹسٹکس, میں یہ صرف اپنی طرف سے باتیں نہیں کر رہی, یہ ساری میں نے ریسرچ کی آپ کے لیے, کیونکہ یہ چیز آج تباہ کر رہی ہے ہماری نسلوں کو. اس صرف امریکہ میں 480,000 یعنی مور دین 4 ملین, سوری 400,000, مور دین 400,000 لوگ ہر سال اس سے مرتے ہیں, اور 41,000 ان میں وہ ہیں جو سیکنڈ ہینڈ ایکسپوز ہوئے ہیں. بےچارے ان کا تو کوئی قصور بھی نہیں, ان میں بچے بھی ہو سکتے ہیں, ان میں اور بھی آدمی کے گھر والے ہو سکتے, ظاہر اس کی فیملی ہی ہوتی جو اس کے اراؤنڈ ہوتی. اور یہ انہوں نے کہا 10 سے 13 سال تک کی انسان کی زندگی کو کم کر دیتا ہے, اگر انسان اس کو نئی چیز کو کرتا تو اس سے 10 سے 13 سال ایک نارمل انسان کی جو زندگی, تو اس سے پہلے یہ انسان مر جاتا, کیونکہ ظاہر ہے اس کو تو وہ بہت بیماریاں لگ جاتی ہیں. اور اکثر ایسے لوگ 65 کی عمر تک بھی نہیں پہنچتے. پھر ورلڈ وائڈ جو WHO نے بتایا 8 ملین لوگ, 8 ملین سے زیادہ, مور دین 8 ملین تھا, یعنی 80 لاکھ, 800,000 سے زیادہ لوگ دنیا میں ہر سال مرتے ہیں اس سے. آپ کرونا پر ہوتے ہیں, یہ دیکھیں آپ, یہ سٹیٹسٹکس دیکھیں, یا میں خود نہیں لے کر آئی ہوں, یہ آپ سب لوگ گوگل کر سکتے ہیں. اور ان میں 1.2 ملین وہ لوگ ہیں جو سیکنڈ ہینڈ اس سے ایکسپوز ہوئے, سیکنڈ ہینڈ, آپ دیکھیں گے بےچاروں, ان کا کوئی قصور بھی نہیں, یعنی انسان خود کو تو نقصان پہنچاتا ہے, ان کو بھی نقصان پہنچاتا ہے, ان کے لیے بھی مصیبت کھڑی کرتا ہے. اور آج یہ جو جس کو کہتے ہیں ہیٹڈ ٹوبیکو پروڈکٹس HTPS, یہ اتنے کامن ہو گئے, جن میں شیشہ, جن میں ان کے نام اور بھی بہت سارے نام ہیں اس کے اندر, جو حکا اور ویپنگ اور یہ ساری چیزیں اس کے اندر آتی, کیا کیا ان کے اندر چیزیں, ای سگریٹس, یہ کوئی سمجھتا ہے نا کہ یہ سگریٹ نہیں ہے اور جناب یہ سگریٹ سے کم ہے. دیکھیں جب ٹوبیکو وہی حرام ہو گیا تو یہ نکوٹین بھی اسی کا ایک کمپوننٹ ہے, نکوٹین اس کے اندر, یہ اور یہ ان میں نکوٹین ہوتی ہے जो इतनी एडिक्टिव चीज है और दिमाग की डेवलपमेंट रोक देती है यूथ में, दिमाग नहीं डेवलप होता, इससे लंग कैंसर होता है, हार्ट डिजीज का रिस्क बढ़ जाता है। तो नाम अलग अलग चाहे रख दे, काम वही है, वही सिगरेटों वाला ही काम है। शीशे के अंदर उन्होंने बताया 4000 टॉक्सिक सब्सटेंसेस हैं, 4000, जिनमें निकोटीन भी है, जिसमें रेडियो एक्टिव और सब्सटेंसेस भी हैं, जिनमें हैवी मेटल भी है, तार है, इंसेक्टिसाइड्स हैं। तो इसके अलावा वो फ्लेवरिंग कर देते हैं, वो जो फ्लेवरिंग का नुकसान है ना, वो तो अभी सामने आया ही नहीं है, वो तो अभी आगे पता चलेगा। ये नई चीजें हैं ना, इनके पता चलेंगे जब लोग आगे आगे इनको करेंगे, क्योंकि रिसर्च इनके ऊपर अभी उतनी नहीं हो सकी जितनी हुई है। उससे उन्होंने बताया नंबर वन, हाईली एडिक्टिव है, इंसान इसके ऊपर लग जाता है तो छोड़ नहीं सकता, लंग फंक्शन उसका कम हो जाता है, गले मुंह मेदे का, ये एसोफगस जो आपकी ये नाली होती है खाने की, इसका कैंसर हो जाता है, खून में कार्बन डाइऑक्साइड की कंसेंट्रेशन बढ़ जाती है। और एक बात से मैं इतनी डरी ना कि मेल और फीमेल दोनों में फर्टिलिटी कम हो जाती है, बच्चा पैदा करने की जो सलाहियत है वो कम हो जाती है, इससे टीबी का चांस हो जाता है, चेहरे पे झुर्रियां जल्दी पड़ जाती है, और हार्ट अटैक का तो मैंने आपको बताया उसके चांसेस बढ़ जाते हैं, ब्लड प्रेशर की बीमारी हो जाती है। ये सब क्या है, यानी इंसान अपने आप को स्लो पॉइजनिंग कर रहा है। एक तो बेचारा बीमार होता है ना, तो वो बीमार हुआ, किसी को कैंसर हुआ या कुछ हुआ, तो एक अल्लाह की तरफ से कोई बीमारी है, एक है कि वो खुद अपने आप को कर रहा है। इससे बड़ी नाकदरी क्या हो सकती है अल्लाह की इस नेमत की, जो अल्लाह ने दी हुई है जिस्म की सूरत में, एक सेहत की सूरत में, और इसको आज हमने फैशन बना लिया कि बहुत कूल है, और उसके एड्स ऐसे दिखाए जाते हैं कि ये बड़े बड़े जबरदस्त चीज है, ये तो ऐसी चीज है कि बड़े टॉप के लोग करते हैं, जो देखो कैसी गाड़ियों में जा रहे हैं और जिसके साथ कैसी लड़की है वो करते हैं, लड़कियां भी इसमें पड़ गई, लड़के भी पड़ गए, ऐसी शॉप्स खुल गई, ऐसी ऐसी दुकानें हैं जहां पे ये चीज की जाती, और फिर कहते हैं ये कहां से, ये क्या जायज है, ये देख लें, वला तक्तुलू अनफुसकुम, मत कत्ल करो अपने आप को, इसमें अपने आप को भी कत्ल करते हैं और अपने घर वालों को भी कत्ल करते हैं, एक को नहीं सिर्फ नुकसान पहुंचता। ये है हमारे जो आज के इश्यूज हैं, इसलिए मैं इसके ऊपर आना चाह रही थी, बजाय इसके कि मैं लॉन्डियों के ऊपर ही आपको बताती हूँ कि उनके क्या हकूक हैं या क्या उनके पर, मेरे पास सारा वो भी पड़ा हुआ है कि लॉन्डियों के क्या है, लेकिन मैं इसलिए नहीं वहां पे इतना टाइम लगाना चाहती कि ये हमारे आज करंट इश्यूज हैं जिनका लोगों को नहीं समझ आती, और फिर वो इसको सोचते हैं कि इस्लाम में तो ऐसा नहीं है, तो शराब हराम है, लेकिन ये चीजें तो कुछ नहीं है। जब ये कह दिया गया तो इसके अंडर जितनी भी चीजें आ गई वो सारी इसमें आ गई। इन्नल्लाहा काना बिकुम रहीमा, समझो बात को लोगो, अल्लाह तुम पे रहम करने वाला है, वो तुम्हें नहीं चाहता कि तुम नुकसान में पड़ो, वो तुम्हें नहीं चाहता तुम अपना बेड़ा गर्क करो खुद, जिन माशरों में बातिल तरीके राइज हो जाएंगे और जिन माशरों में लोग इस तरह के कामों में खुद पड़ जाएंगे, वहां का क्या हाल होगा, यूथ है वो मुंह से धुएं निकाल रही है और लोग बातिल तरीके से नाजायज माल खा रहे हैं, जो सारे जो ऐसी किस्म की चीजों की खरीदो फरोख्त भी नाजायज है, और जो भी और तरीके जो बाजारों में चल रहे हैं जो हराम के हैं वो सब नाजायज हो गए, अल्लाह तुम पे रहम करना चाहता है। देखिए ये आज जो दुनिया में हमारे मसले मसाइल ना, वो ऐसे ही नहीं है, इनके पीछे कुछ चीजें हैं जो हमें बेचैन रखती हैं, जो हमें ये एंग्जाइटीज, ये डिप्रेशन, ये इनके पीछे ये चीजें हैं, कोई इंसान सुकून में ही नहीं, हर चीज घरों के अंदर फिर भी सुकून नहीं, क्योंकि बातिल तरीके हैं हमारे, कमाइयों के तरीके बातिल हो गए, कहां कहां से हम कमा के लाते हैं, और कनात तो बिल्कुल नहीं है कि हम किसी चीज के ऊपर कनात करें कि बस इतना काफी है, हविस और की, और जब वो हविस इतनी बढ़ जाती तो फिर इंसान हराम में भी हाथ डालने लगता है। इन्नल्लाह काना बिकुम रहीमा, इस बात को याद रखो, तो अल्लाह ताला ने जो तुम्हें अहकाम दिए ना, वो तुम्हारे अपने सुकून के लिए, वो तुम्हारे पर रहम करने वाला है, इसलिए तुम्हें बताया कि देखो ये रास्ते सही नहीं है। وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ عُدْوَانًا وَظُلْمًا, और जो भी ये सब जाती करेगा, जुल्म करके साथ ये चीजें करेगा, यानी हद से बढ़ेगा, ये जो अल्लाह की हदें हैं इनको तोड़ेगा, उद्वान यही है ना, हद से बढ़ना, और जुल्म करेगा, हक तल्फी करेगा, कि जुल्म क्या है, किसी का हक ना देना, فَسَوْفَ نُصْلِيهِ نَارًا, तो वो आग में दाखिल कर दिया जाए, आखिर आग में हम उसको दाखिल कर देंगे। وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرًا, और ये अल्लाह के लिए बहुत आसान है, ये ना समझना अल्लाह के लिए मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि मैं तो बड़ी नमाजी हूं, मैं तो उम्मती हूं, मैं तो नाते बड़ी खूबसूरत पढ़ती हूँ, मैं तो बड़ा हज मैंने किए। मैं किसी ने मुझसे क्वेश्चन ये किया है कि उन्होंने ये मेहर की बात किसी को बताई तो उन्होंने कहा लो अब अल्लाह ताला इतनी इतनी बातों पे हमें पकड़ेगा, लो अल्लाह कुछ नहीं करता, ये अब इसकी भी पूछ होगी भला। तुम ये सोचते हो अल्लाह ताला ने ये अहकाम ऐसे ही दिए गए, यानी ये ऐसे ही आयतें लिखी हुई है, सिर्फ वैसे ही लिखी हुई है पढ़ने के लिए। हाँ, इसके अप्लाई ना करना, ये अल्लाह ने कौन सा पूछना है, उसने ऐसे ही अहकाम दे दिए और उसे पूछना भी नहीं, नहीं जवाबदेही का भी इनकार। तो अल्लाह के लिए ये बड़ा आसान है, तुम किसी खुशफहमी में, यानी किसी खुशफहमी में ना रहना, किसी बात को ये ना सोचना कि ये इसको लाइट ले लो तुम, इससे क्या फर्क पड़ता है, इससे क्या हो जाएगा, फिर क्या हुआ, ऐसे तो सारे ही करते हैं और धड़ल्ले से करते चले जा रहे हैं। नहीं, ये फिर आग में, मैं कैसे आग में जा सकती हूं, मैं कौन सा ऐसा कुछ किया है, नहीं ये अल्लाह के लिए पर बड़ा आसान है। अपने मुसलमान होने की खुशफहमी में, अपने इस्लाम, अपनी नमाजें, अपने हज, अपने इनकी खुशफहमी में ना रहना, मेरे अल्लाह को परवाह नहीं है, और ये उसके लिए आसान है। आपको लगता होगा कि हाय पता नहीं वो तो अल्लाह अल्लाह ताला कहाँ किसी को डालेगा इसके अंदर, नहीं ये नहीं हो सकता, नहीं ये बता रहा है कि ये गुनाह कितने शदीद है।